आप 12 से 1 बजे के बीच जो सामायिक करते हैं स्पिरिट में, नमोकार मंत्र की जाप करते हैं या कि कोई दूसरी, या कितनी बार करते हैं एक घंटे के पीरियड में? जितनी बार हो जाए उतनी बार, अपने को एक घंटे करना है, इससे मतलब नहीं है, काउंट करने का नहीं रहता है कि इतनी जाप करना है। कभी बहुत शॉर्ट टाइम है तो कम से कम 5 जाप, एक जाप 10 मिनट वाली, 3.5 मिनट वाली नहीं, जब 10 मिनट वाली एक जाप करेंगे नमोकार मंत्र की तो 50 मिनट हो जाएगा। अंतर मुहूर्त सामायिक का 2 घड़ी सामायिक का समय है, 48 मिनट कम से कम सामायिक में बैठना चाहिए। मन तो कितना रुकेगा ये तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन शरीर रुकेगा और वचन रुकेंगे। वचन से हम 48 मिनट तक कुछ भी पाप वचन नहीं बोलेंगे, शरीर से कोई पाप क्रिया नहीं करेंगे। रही बात मन की, तो मन को भी पाप से बचा करके और अच्छी जगह कहीं एंगेज करेंगे, चाहे मंत्र में एंगेज करें या कि मंत्र का चिंतन करें या कि भगवान की प्रतिमा का स्मरण करें, जिस तरह से भी हो ये सारे प्रयास सामायिक में करते हैं तो वही हम लोग करते हैं। आहार के पहले जो मंदिर में मुद्रा लेते हैं वो कौन सा मंत्र? नमोकार मंत्र पढ़ करके 9 बार, और प्रत्याख्यान निष्ठापन किया जाता है कि मैंने कल जो प्रत्याख्यान लिया था, चारों प्रकार का आहार किया था, का त्याग किया था, अब उसका निष्ठापन करता हूँ प्रत्याख्यान का और आहार के लिए निकलता हूँ, और ऐसा ऐसा अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं चले जाऊँगा, नहीं मिलेगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, ये इस तरह की विचार करके वो निकल जाते हैं। फिर वापस आते हैं तो फिर प्रत्याख्यान करते हैं कि मैं फिर से जो है कल तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ, प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन कहलाता है। तो निष्ठापन और प्रतिष्ठापन दोनों क्रियाएँ होती हैं। चौकी में भी जो है निष्ठापन किया जाता है और प्रतिष्ठापन किया जाता है भगवान के सामने भी। अगर गुरु हैं तो फिर गुरु की साक्षी पूर्वक, फिर भगवान की साक्षी की आवश्यकता नहीं रहती, गुरु की साक्षी पूर्वक प्रतिष्ठापन और निष्ठापन दोनों करेंगे। ये प्रक्रिया रहती है आहार की प्रक्रिया।
सामायिक और ध्यान में अंतर
बता चुका मैं, सामायिक चिंतन की प्रक्रिया है, ध्यान चिंतन के रुक जाने की प्रक्रिया, एकाग्रता का नाम ध्यान है, और निरंतर जो हम चिंतन कर रहे हैं 12 अनुप्रेक्षाओं का जो चिंतन करते हैं वो सब सामायिक के अंतर्गत आएगा। या आत्मा का विचार कर रहे हैं या पंच परमिष्ठी का विचार कर रहे हैं, जब वो विचार करते करते हम किसी एक विचार पर स्थिर हो जाते हैं वो ध्यान के,
जैसे आत्मा पर स्थिर होगा धीरे धीरे
स्थिरता कहलाए, विचारों की स्थिरता किसी भी विचार, क्योंकि निर्विचार तो व्यक्ति हो नहीं पाता, किसी विचार पर स्थिर हो सकता है, तो किसी विचार पर एक निश्चित प्रकार के विचार पर हम स्थिर हो जाते हैं वो हमारा ध्यान कहलाता है, एकाग्र हो
जाना।
एक विचार से दूसरे विचार के बीच के गैप को निर्विचार कहें तो कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। निर्विचार का अर्थ हाँ, जिसका गैप जितना ज्यादा हो। आयु का इन्होंने कोई एक गजल के लिए लिखा हुआ है कि वो सुना दी, वो तो फिल्मी है, उसको क्यों, हालांकि है अच्छी पर उसको अपन क्यों, ये वो कोई फिल्म में है शायद, ये दौलत भी या कि उनकी है, जगजीत चित्रा सिंह की है, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो वो वाली, तो ये तो बहुत वो है, इसको मेरे से क्या सुनिएगा। आयु का बंध कैसे बनता है ये मैं कई बार बता चुका हूँ। ध्यान की प्रक्रिया किस दिशा में बैठकर, कैसी स्थिति में बैठकर करें, क्या नमोकार मंत्री पढ़ना चाहिए? हाँ, नमोकार मंत्री पढ़िएगा उस समय। और किस दिशा में करें, तो जिस दिशा में भगवान रहते हैं, देखिए पूर्व और उत्तर दिशाएँ, दो दिशा है, इन दिशा में बैठ करके ध्यान और सामायिक इत्यादि करना चाहिए। मंदिर है अगर तो मंदिर में फिर किसी भी दिशा में कर लीजिएगा, भगवान की तरफ मुंह करके बैठ जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अपने घर में बैठे हैं तो फिर जरा दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस दिशा में अपने को बैठना है। समस्त मानव समाज औपचारिक रूप से धार्मिक मालूम पड़ता है, सभी अपने अपने इष्टदेव गुरु और धार्मिक पुस्तकों का आदर करते हैं, पर उपदेश और आदेश का पालन बहुत नगण्य होता है, जबकि सांसारिक और शारीरिक ज्ञान देने वाले डॉक्टर वकील आदि जिनके सलाह का सभी लोग पालन करते हैं, उनके चरण भर नहीं छूते हैं, बस इतना, उसका क्या कारण है? असल में व्यक्ति जो है 3 तरह से अपने जीवन को बिताता है। एक तो शरीर की सेवा शुश्रूषा में बिता देता है। अधिकांश लोग 90% लोग जो है शरीर के लिए अत्यंत चिंतित हैं। फिर दूसरे तरह के और थोड़े से लोग हैं जो अपने मन में उठने वाले विचारों के लिए चिंतित हैं कि ये पूरा हो जाता, हमने सोचा था ये हो जाता, हमारी जिंदगी में ये हो जाता, तो वे अपने विचारों के प्रति ही मोही हैं, सो अपने विचारों को ही पूरा करते रहते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो शरीर और मन से ऊपर उठ करके अपने आत्मा के बारे में, शरीर और मन दोनों को छोड़ करके उस आत्मा के बारे में कुछ समझना चाहते हैं या कि कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। शरीर और मन की क्रियाएं तो जो है बहुत बाह्य हैं, तो उनमें हमारी अप्रोच है, उनमें हमारा जल्दी ही बन जाता है, पर जो आत्मा की बात है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, अप्रत्यक्ष है, तो उस पर विश्वास जल्दी से नहीं जमता। डॉक्टर साहब तो अब भी टेबलेट लिखे तो खा करके तो जरा हेडेक ठीक हो जाता, तो लगता डॉक्टर ठीक है, जरा दवाई तो खाई और ठीक हो गया। महाराज जी कह रहे थे कि जरा ध्यान किया करे सुबह से उठ करके और जरा शांतिपूर्वक बैठा करे, हेडेक ठीक हो जाएगा। तो वर्षों हो गए प्रयास करते, कभी हेडेक ठीक ही नहीं हुआ, ये कौन सी प्रक्रिया है? तो वो उस पर विश्वास नहीं जमता, और डॉक्टर की एक टैबलेट पर विश्वास जमता है। तो अब सवाल ये है कि जब तक व्यक्ति का अपना सोच इस तरह का है, तब तक वो किसी चीज को एक्सेप्ट कैसे कर पाएगा, चाहे वो धर्मगुरु कहे चाहे वो तीर्थंकर क्यों ना आकर के कह दे। साक्षात तीर्थंकर भी आते हैं, धर्म का उपदेश होता है, सब थोड़ी कल्याण कर लेते हैं अपना, सब थोड़ी मान लेते हैं। उसके लिए जिसके भीतर जो है आत्म जागृति हो जाती है, वो व्यक्ति फिर उसको रुचि से लेता है कि ठीक है, अगर सिर दर्द ठीक हो जाने मात्र से आत्मा का कल्याण होता हो तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तो कल के दिन पैर में दर्द हो जाएगा, कल के दिन और कहीं दर्द, मैं तो ऐसा इंतजाम करूंगा कि इस दुख से ही बच जाऊं, मुझे दर्द ही ना हो किसी भी, ये शरीर का ही सारा देह धरे को दंड है, हमने शरीर ही धारण किया इस वजह से ये सारा दर्द है, अब ठीक करता हूँ इसको, इसको कैसे ठीक करूँ, इस शरीर से पार हो जाऊं। हम इंतजाम करते हैं शरीर को जरा ठीक भला चंगा रखने का, और धर्म इंतजाम करता है कि शरीर ही का हिसाब किताब मिटा दो तो झगड़े ही खत्म हो जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी वाली। तो वो एक प्रक्रिया अलग देता है, वो उस पर श्रद्धा बहुत देर से जमती है, जो प्रत्यक्ष है उस पर श्रद्धा जल्दी जम जाती। तो व्यक्ति सब जानता बूझता है फिर भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा शरीर के स्तर पर और प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ता उस पर जीता। अगर उसे ये श्रद्धा हो जाए कि कहीं भीतर परिवर्तन जो भीतरी है उसके लिए ये धार्मिक उपदेश अनिवार्य है, तो वो स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, ऐसी बात नहीं है। धर्म व्यक्तिगत साधना है जिसमें धन से कोई संबंध नहीं, बिना धन के पूर्ण धर्म संभव है। जबकि समारोह उत्सव आदि में धन का व्यय देखा जाता और धर्म नारे और जय जयकार तक सीमित रह जाता, यह भी है होने लगा। हमारे टाइम में तो जब दीक्षा भई थी, सो दीक्षा को पंपलेट तो ठीक ही है, एक दिन पहले कहीं कोई ने फोन तक नहीं किए थे कि कल दीक्षा होने वाली, आता ही पता नहीं था, जिनको पता भी लग गया था वे कहते ठीक है अपन देखेंगे और क्या करना, हल्ला मचाने से क्या मतलब। अब तो ऐसा लगता कि नहीं हल्ला मचाओ और सबको खबर भेज दो, पता तक नहीं लगेगा कि कब हो रहा है क्या प्रोग्राम, सब पंपलेट छपवा लो एक हर एक चीज के। पहली बार देख रहा हूँ कि इसमें मेरे चतुर्मास में हर प्रोग्राम का एक पंपलेट अलग से जो है, या तो कार्ड छपा है या छोटा सा हैंडबिल छपा, चलिए अब क्या करें, वो तो देनी पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि घरों घर सूचना पहुंचनी चाहिए, तो 300 तो छपेंगे कम से कम, हर एक घर में माली से भिजवा दें एक एक, अब यहाँ ही नहीं था क्षेत्र पे, तो ये क्या चीज़ है उतना पैसा। नहीं तो पहले 50 लोग थे समय सागर जी की दीक्षा में, सिर्फ 50 लोग, और वो भी जो पूजा वूजा कर रहे थे तो वो कह रहे क्या हो रहा, कह रहे दीक्षा हो रही, मुनि दीक्षा हो रही, आचार्य श्री पहली मुनि दीक्षा दे रहे हैं, यही द्रोणागिरि की बात है, ना शोर शराबा ना हल्ला ना कुछ भी। और हम लोगों की दीक्षा हुई थी उसमें भी, जो संडे के दिन जितने लोग आते हैं सो वो लोग थे उसमें, और खत्म हो गई दीक्षा। अब जो है सारी चीजों की प्रोपेगंडा जो है बहुत ज्यादा हो गया, तो धार्मिकता तो खत्म, जहाँ क्वांटिटी होगी वहाँ क्वालिटी खत्म होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिए। वही हुआ कि हमने जो है सब ठीक है, अच्छा है, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, उनका उपयोग करना चाहिए और धर्म के आयतनों में अच्छे से अच्छा हम भी वो करें, पर उसके पीछे जो छुपा हुआ है उसको नहीं भूलें कि हम क्या लौट लेके लौट रहे हैं। हमने इतना बढ़िया पेंडाल लगाया और उस पेंडाल के नीचे हम बैठे हैं, ठीक है, अब हम इस पेंडाल के नीचे बैठ के जो सुन रहे हैं उसमें से क्या लेके जा रहे हैं वापस, क्या पेंडाल की खूबसूरती लेके जा रहे हैं कि बड़ा अच्छा पेंडाल बनाया था इन लोगों ने, कितना पैसा खर्च किया
होगा, ऐसी होती है
नहीं, उसमें बैठ करके हम कैसे धर्म कर सके हैं, ये हमारा उसमें इसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मान्यता बलवती होती जा रही है कि धर्म बिना धन के नहीं होता है, धनवान ही धर्म कर सकता, कृपया ऐसे स्पष्ट करें, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बाह्य जो धर्म है वह जरूर धर्म के, उसके लिए जरूर पैसे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आंतरिक धर्म करने के लिए, नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए कौन सा, किसको वो चाहिए है, बल्कि धन और छोड़ना आवश्यक हो जाएगा, जितनी देर के लिए आपको धर्म करना उतनी देर आपको धन से मुक्त होना पड़ेगा कोई भी हो। पर वो बात जो है वो समझ में थोड़े जल्दी से नहीं आती, क्या करें, इसको कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा, इति हो माने अति होगी तो इति होगी और फिर नए सिरे से शुरुआत होगी। एकदम तेजी से जो है सब जगह सब समाज में, पहले कभी रामनवमी का मैंने जुलूस निकलते नहीं देखा वैसा, जैसा कि महावीर जयंती का निकलता है, हनुमान जयंती का, अब वो देखा देखी सब धर्म वालों ने अपने अपने वो कंपटीशन में है, हर संप्रदाय कंपटीशन में है कि फलाने का जरूर, अगर ईसाइयों का जुलूस निकला होगा तो फिर हम मॉमडन्स का भी निकलेगा, फिर हिंदुओं का भी निकलेगा, उससे बड़ा निकालेंगे, और उनने 25 झांकी निकाली थी अपन 50 निकालेंगे। और उनके ड्रम बैंड वहां से आए थे, हमारे बैंड यहां से आएंगे, हम आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी चिंता नहीं है, हम क्या करेंगे इसकी चिंता नहीं, क्या क्या जोड़ पाएंगे ये हम बहुत ज्यादा उसमें पड़े हुए हैं। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए, इन सब में धर्म नहीं है ये मान के चलिए, ये सब धर्म के साधन हो सकते हैं, इनके माध्यम से हमारा मन लग जाता है। क्या करें, हम अपने घर में जब इतना बढ़िया से बढ़िया देखते हैं तो यहाँ भी लगता है कि जरा अच्छा हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए अच्छे से अच्छा, लेकिन वहां से कुछ लेके जाइए, और वो चूक गए तो फिर सारा किया कराया व्यर्थ हो गया। अंधेरे लंबे हैं चिराग जलाए रखना, सुबह जरूर होगी माहो, ये कितने चिराग जलाएं कितने तीरगी के वास्ते, अब तो चांदनी के अंधेरे से अनुबंध हो गए, कृपया महाराज जी इनका व्यापक अर्थ बता दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम कौन झगड़े में पड़े, उनने एक और उसके नीचे लिख दी है वो कविता, रात के समय अगर पूजा नहीं की जाती तो शादी के समय रात में पूजा क्यों की जाती है, अब क्या करें आप दिन में शादी करवाते हैं वरना तो दिन में ही चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है कि रात्रि में ही बावर पड़ती है, नहीं दिन में आपकी सुविधा के हिसाब से आपने रात बजे निकाल ली, किसी ने एक आध बार मुहूर्त निकाल दिया होगा कि सुबह 3:30 से 4 के बीच में मुहूर्त है, वो ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाता है उसको, तो दिन ही माना जाता है उसको, रात थोड़ी मानी जाती, तो फिर परंपरा चल गई कि 12 बजे तो बारात शुरू हुई है, फिर 1:30-2 बजे भावर पड़े जब तक सब जने सो जाए, हम तो देखते 2-4 जने रहते हैं उसमें और कुछ नहीं होता, देखा है हमने, बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं हमारा, देखा है हमने कि हाँ ऐसा ही होता और कुछ नहीं होता, पर कोशिश करें अगर तो संभव है कि दिन में ही हो, और सब लोग एक बार तय कर लें तो रात में होने वाले जो जीव हिंसा है या रात में होने वाले जो इतना आडंबर है वो सब कम हो जाएगा, उतना पैसा जो है आराम से सेफ हो जाएगा, कर सकते हैं बस अच्छी बात, इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। आलम्बन चाहिए इनका, पूरा प्रश्न में पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आधा ही पढ़ पाऊंगा जोर से, पूरा तो मन में तो पढ़ लेता, अच्छा है आप अपनी भावना बनाए रखिएगा और जो आपने समर्पण किया है जो आपने श्रद्धा बनाई है उसको मेंटेन करिए। आज के समय में मेरे ख्याल से बुद्धिमान होना आसान है क्योंकि खूब कॉलेज हैं खूब स्कूलें हैं, जितना चाहिए उतना वहाँ पढ़ लीजिएगा उतने बुद्धिमान हो जाइए, लेकिन कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ आपको ये सिखाया जाता हो कि आप कैसे झुकेंगे, कैसे आप अपने भीतर किसी भगवत्ता के प्रति श्रद्धा करेंगे, ये किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता। इसलिए अगर कहीं आपके भीतर ये चीज़ आई है श्रद्धा आई है तो उसको मेंटेन करिए उसको बनाए रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत बहुत फ्रेजाइल है, उसमें लिखा हुआ है कांच की तरह है, ज़रा सा झटका लगता है टूट करके गिर जाती है श्रद्धा, बुद्धि उसे तोड़ती है, इसलिए थोड़ा सा बुद्धि को लगाम दीजिएगा ताकि वो श्रद्धा को डैमेज ना करे, बस इतना ही, और हमें अपनी श्रद्धा के साथ जो विवेक है वो बना रहे। ये क्वेश्चन जो है, ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बच्चों को कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो आपके समझाने के पैटर्न को लेकर के एक्सप्रेस कर देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो अपराध बोध होता है, इसमें क्या अपराध बोध है, हम तो कॉपी ही कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की, और क्या इसमें क्या, हम तो गौरव समझ रहे हैं कि हमने छोटे मोटे आदमी की कॉपी नहीं की है, हमने भगवान महावीर स्वामी की कॉपी कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही 28 मूल गुण का पालन करते थे, हम भी हमारा सौभाग्य कि हम उनके जैसे उनके पीछे पीछे चल पा रहे हैं,
तो अगर इसमें, हम आपकी कॉपी करें तो हम भी गर्व से कहेंगे हम कहना आपकी कॉपी कर रहे हैं,
तो कुछ सवाल ही नहीं लोग कल कहने लगे कि महाराज जी हम वहाँ कुंडलपुर गए थे और बहुत अच्छे लगे हमको महाराज जी, तो हमने कहा हमारे गुरु जी हैं, ऐसा थोड़ी है, छोटा मोटा वो कह रहे बहुत अच्छा लगा हमको वहाँ पर, हमने कहा यही अच्छा ही लगेगा क्योंकि हमारे तो गुरु जी है, हमें उस समय गौरव होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बुरी चीजों के लिए जरूर बचना चाहिए, बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए, उसमें चोरी नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगता हो कि हम किसी की वो ले रहे हैं तो अपन सब लोग क्या ले रहे हैं, परंपरा से सारा कुछ चला आ रहा, अपना क्या है उसमें ओरिजिनल बताइए, मैं इतने क्वेश्चन आंसर जो दे रहा हूँ क्या मेरा इसमें कुछ है, मैं तो सिर्फ अपना बोल रहा हूँ, बाकी तो सब पूर्व के आचार्यों का उपकार है कि उनने हमें सारा ज्ञान दिया, हम धीरे धीरे उसको देते चले जा रहे हैं, इसमें किसी का अपराध बोध वाली चीज नहीं आना चाहिए। यदि मानव कर्म शून्य हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, मानव ही नहीं रह जाएगा, कर्म शून्य हो तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म चेतना कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, तीन चेतनाएं तो जो है जीव के होती हैं अलग अलग स्थितियों में, जो एक इंद्री है वे तो कर्म फल चेतना में ही डले रहते हैं, जो त्रस जीव है वहां से कर्म चेतना भी शुरू होती है, तो कोई भी जीव हो बाहर से भले ही ना कर्म करते दिखाई पड़े लेकिन अंदर में तो उसके कर्म चलता ही रहता है। मन वचन काय की क्रिया हमेशा चलती रहती है।
तो कर्म चेतना सोमर असुर दोनों होती है,
दोनों प्रकार की। अभी नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन आंसर करता हूँ फिर उसके बाद। ये हो गया, मानव में नवीन चेतना जगाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे अच्छे विचार देना चाहिए पहली चीज, उसे श्रद्धा और विवेक सिखाना चाहिए, दोनों चीजें हैं, ताकि उसके भीतर चेतना आए। एक नई चेतना की जागृति तभी होगी जबकि व्यक्ति व्यक्ति को सम्मान देगा, और वो तब देगा व्यक्ति व्यक्ति को सम्मान, प्राणी मात्र को सम्मान देगा वो तभी दे सकता जबकि उसके अपने भीतर श्रद्धा पैदा हुई हो या उसके अपने भीतर थोड़ा सा विवेक जागृति पैदा हुई।
कर्म चेतना और ज्ञान चेतना साथ साथ है क्या? ज्ञान चेतना,
ज्ञान चेतना तो सिद्धों के लिए मानी गई,
सिद्धों
के लिए। पाणित मधिकंतानम नानम विंदन्ति ते जीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत हैं वे ही कर्म ज्ञान चेतना को वाकई में भोग। सम्यक ज्ञान को ज्ञान चेतना नहीं कहेंगे अपन, वैसे सम्यक ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान चेतना मानो तो कोई विरोध नहीं है, वो तो फिर चौथे गुण स्थान से जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ से ज्ञान चेतना मान लो, कई लोग ऐसा मान लेते हैं, पर अपन देखें अगर गौर से तो ज्ञान चेतना जो है नहीं, अरहंतों के लिए नहीं लिखी, अरहंतों के लिए स्वीकार तो की जैसे स्वामी ने, लेकिन अमृतचंद स्वामी ने भी की है जैसे की व्याख्या की है उसमें, पर कुंतुन स्वामी तो कहते हैं कि पाणित्य मधिकंतानम, जो प्राणों से 10 प्राणों से अतिक्रांत है वे ही है। अमृतचंद स्वामी ने केवली भगवंत के लिए भी प्रवचन सार में ले लिया। आज कुछ ऐसा सुनाइए जो कि अभी तक ना सुनाया हो। सोच सोच के थोड़ी सुनाया था कि आज ये सुना दिया है कल ये सुनाऊंगा, जितना बचा है बाकी तो वो तो जब जो आ जाए जिसके क्वेश्चन के माध्यम से निकलता रहता, मुझे भी नहीं मालूम है कि कितना सारा और पड़ा हुआ है जो नहीं सुनाया है या कि सुना चुका हूँ। भगवान बुद्ध के घर में किस तरह की परिस्थितियों में छोड़ा, घर किस तरह की परिस्थिति में छोड़ा, अब इसके लिए तो कहानी बिल्कुल बनी बनाई कहानी है कि गोपा को राहुल को सोते हुए छोड़ के चले गए थे, उनके विरक्ति हुई तो छोड़ करके चले गए ऐसा।
हाँ,
इससे ज्यादा और कहीं मिलता नहीं। टॉल्स्टॉय के बारे में भी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने उनको सिर्फ पढ़ा है, उनकी जीवनी भी मैंने नहीं पढ़ी है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में बता दीजिएगा, जीवन की उत्पत्ति के बारे में तो जैन धर्म की मान्यता ये है कि यहाँ जीवन हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जीव की परिभाषा ये है कि जो जीता था आगे जिएगा, जो जीता है वर्तमान में वही जीव है। कोई ऐसी फिलॉसफी भी चलती है जैसे डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी चलती है कि पहले हम बहुत छोटे छोटे थे, अमीबा से हमने डेवलप करा और फिर बंदर हुए और हम बंदर से डेवलप करके मनुष्य हो गए। ये जो इस तरह की थ्योरी है आउट ऑफ डेट हो गई। फॉरेनर्स भी कह रहे हैं कि नहीं, वी आर ऑल द ट्रांस माइग्रेटेड पर्सन, हम लोग यहाँ पर जो हैं वो अचानक पैदा नहीं हुए, हम लोग कहीं ना कहीं से आए हुए लोग हैं, मतलब हमारी एग्जिस्टेंस पहले थी, हम एज इट इज मनुष्य ही मनुष्य होता है, माने मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी जानवर को डेवलप करके और मनुष्य बना दीजिएगा इस तरह की। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पशु अपने जीवन में कोई त्याग तपस्या करे या कि कोई अच्छा कार्य करे तो आगे जाकर के मरण के बाद उसे मनुष्य जीवन मिले तो मिल सकता है, ये इम्प्रूवमेंट ऐसा कह लीजिएगा तो मैं मान सकता हूँ, ये इवोल्यूशन तो हो सकता है। लेकिन कोई अभी कल तक जो है बंदर था और फिर उसमें से कोई मनुष्य पैदा हो गया, ये जो इस तरह की चीज है वो चीज ठीक नहीं। डार्विन की ये थ्योरी आउट ऑफ डेट है भाई। तो रिवॉल्यूशन थ्योरी कभी आप पढ़िएगा जैन धर्म की, तो उसमें यही लिखा कि जब प्रलय होती है छठे काल के अंत में तब 72 जोड़े देवों के द्वारा बचा लिए जाते हैं, और वैसे तो सिंगल बहुत सारे लोग, पेयर जो है 72 बसती हैं, सिंगल तो हजारों की संख्या में, पशु भी बसते हैं मनुष्य भी बसते हैं, वे विजयार्थी की गुफाओं में छुपा दिए जाते हैं, फिर प्रलय खत्म हो जाने के बाद वे बाहर निकलते हैं और फिर से जीवन शुरू होता है। तो इस तरह की प्रक्रिया दी हुई है। जीव के शरीर की उत्पत्ति को अगर शरीर मानते हो तो कोई भी जीव चारों गतियों में से किसी न किसी शरीर को धारण करने की क्षमता रखता है, वो उसमें पैदा हो जाता है, इसी को जो है जीव की उत्पत्ति माने तो मानिएगा शरीर की उत्पत्ति को भी जीव की। पर जीव ना उत्पन्न होता है ना नष्ट हो जाता है, एनर्जी की तरह है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बता दें कि आप किधर जा रहे हैं, यही तो मुश्किल है किधर जा रहे हैं, एक चीज ये नहीं बता, ये प्रश्न अच्छा नहीं है, आप क्यों जा रहे हैं ये प्रश्न अच्छा है, ये कि आप मत जाइए ये भी अच्छा,
आप मत जाइए
ये अच्छे प्रश्न है, मतलब शून्य और अनंत का मेल क्या किसी बिंदु पर संभव है, तुलनात्मक ढंग से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्पष्ट कर दीजिए। एक्चुअली दोनों चीजें एक सिक्के के दो पहलू मान के व्याख्या करें तो वैसी व्याख्या भी कर सकते हैं। शून्य का अर्थ हम यहाँ पर एम्प्टी से नहीं लेंगे, हम वैक्यूम से नहीं लेंगे। शून्य का अर्थ यहाँ पर हम ये लेंगे कि जब आत्मा अपने जो आठों कर्म है उनसे रहित हो जाती है तब वो कर्म शून्य रहित, कर्म से शून्य अवस्था हो गई, जब उसकी वो प्योर एग्जिस्टेंस है। वो प्योर एग्जिस्टेंस अगर हम मान के चलते हैं तो वही तो उसकी अनंत आत्मकता है, वही तो अब अनादि काल तक वो अपने शुद्ध स्वभाव में रहेगी, ये उसकी अनंतता है। बेटों को अच्छा खूब खेलने के लिए मिल रहा है, आराम से भी निश्चिंत है। थोड़ा सा बोलिएगा उनको, समझाइएगा, थोड़ा सा दूर ले जाए उनको, खेलने दें, थोड़ा सा दूर खेलें। तो दोनों अच्छा, और फिर शून्य को इस तरह व्याख्यायित करें अपन कि मैं आपसे बात कर रहा था कि शून्य को कर्मों से शून्य हो जाना, या कि नीचे की स्थिति में जब हम इंद्रिय और मन इन दोनों के विषयों को शून्य कर देते हैं तब भी एक स्थिति बनती, तो हम अनंत की तरफ यात्रित होते हैं। जब हम अपने मन वचन काय की क्रियाओं को रोक लेते हैं, या कि जब हम अपने मन वचन काय की क्रियाओं को का निरोध कर देते हैं, या कि अशुभ का भी निरोध कर देते हैं, तब जो एक खालीपन हमारे भीतर आता है, जो शून्यता आती है, वो शून्यता हमें अनंत की तरफ यात्रित करती है, ले जाती है। और एक वो स्थिति है जबकि हम कर्मों से मुक्त होकर के कर्मों से शून्य हो जाते हैं, तब हम अनंत ही हो जाते हैं, वही तो अनंत अवस्था है हमारी। तो शून्य ही अनंत है। अगर हम कहिए कहें, एक सूत्र लिखा हुआ है शायद उपनिषद का है, पूर्णम पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लीजिएगा तब भी पूर्ण रहेगा, ऐसा करके जो है वो यही है। शून्य में से शून्य निकाल लीजिएगा, शून्य जोड़ दीजिएगा, क्या रहेगा? अनंत में से अनंत निकाल लीजिएगा तब भी अनंत है, अनंत में अनंत जोड़ दीजिए तब भी अनंत है, इनफिनिट कांस्टेंट है। इसी तरह अगर देखें तो शून्य और अनंत दोनों एक ही, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इनको अगर कहें तो एक ही रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस जन्म से पुण्य कर्म करता है जिससे कि मान लीजिए अगले जन्म में उसे संपन्न कुल में मानव पर्याय मिल गई, तो अब क्या कर्म संपन्नता से प्रभावित होते हैं अथवा पहले किए कर्मों के अनुकूल नियत रहेंगे? मैं क्लियर नहीं समझ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इस जन्म में जो पुण्य कर्म करता है उसके फलस्वरूप उसको मनुष्य कुल मिल गया, अच्छा संपन्न कुल मिल गया, तो क्या कर्म संपन्नता से प्रभावित होंगे? अब उसके जो कर्म हैं, जो उसने डिपॉजिट किए हैं, जिन कर्मों से उसने, कुछ कर्म तो ऐसे होंगे जिनसे कि उसने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, मनुष्य आयु का बंध किया होगा, तो उसने मनुष्य आयु, अब जो शेष कर्म उसने बांधे हैं, 7 कर्म और हैं आयु कर्म के अलावा, तो वो कर्म तो मनुष्य आयु में आकर के अपना फल देंगे, तो उसमें फिर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव जैसे होंगे वैसा अपना कर्म फल देगा। ये कर्म फिलॉसफी, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि असाता का उदय अगर आपके मंदिर में उदय में आ जावे, असाता का उदय, तो क्या करोगे आप? भाई थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा और क्या, लगाए रहो, मन लगाए रहो, बैठे रहो, कौन यहाँ से बीच में से उठे? या कि क्रोध का उदय आ गया और क्षेत्र आपका जो है मंदिर का है, तो क्या करेंगे आप? क्रोध के उदय में भी जो है शांत कर लेंगे, इस बात का लोभ है कि 4 लोग हमें क्या कहेंगे, सो उस लोभ के मारे उस क्रोध को जो है शांत करके बैठे रहेंगे चुपचाप। और अगर वही बाहर आया हो और कोई ने थोड़ा सा ऐसा कुछ किया हो और उस समय आपके साथ 2-4 और आपके आपके सहयोगी हो, तो आपका 2-4 उसी क्रोध में चांटी भी मार सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, कि बाकी निपट लेंगे फिर बाद में। तो ये क्या, कर्म ने अपना फल, एक ही कर्म था, द्रव बदल गया, क्षेत्र, द्रव वही है, क्षेत्र बदल गया या कि समय बदल गया, तो वो अपना फल जो है, जैसे नरक में किसी को उसी असाता का उदय आवे तो क्या करेगा, सिवाय मारी थारी की और क्या करते, वहां पर दो ही काम है असाता के उदय में, साता को भी वो कन्वर्ट कर लेते हैं असाता में, तो अपना द्रव क्षेत्र काल और भाव के अनुसार ही कर्म अपना फल देता है। चार में गुणा, जब तुम अपनी पूरी आयु में 4 का गुणा करोगे तब बराबर होगा। पंडित जी 84 के हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं करो, 84 तो आप वहाँ बिना मेरे पास है। 85। तो ये हुआ कि जो कर्म हमारे साथ बंधे हुए हैं, जो हम लाए हैं, वो मनुष्य आयु में भी हमें भोगना पड़े, हाँ इतना जरूर है, असाता का उदय आया और आप चूंकि संपन्न घर में हैं तो जल्दी से आपको मेडिसिन मिल गई, जल्दी से आपको सहयोगी मिल गए, और अगर असाता का तीव्र उदय होवे तो सब सामग्री धरी रहे तो भी नहीं। अब बिरला जी हैं, चाहे टाट इतने बड़े हैं, लेकिन दाल रोटी खा पाते हैं क्योंकि उनको डायबिटीज हो गई, रया बड़े आदमी, उससे क्या होने वाला, आपने बाकी कर्म किए थे तो दाल रोटी खाना पड़ेगी, मूंग की दाल का पानी पियो। तो बहुत उसमें लिखा हुआ है कि पुण्य प्राप्त होने के बाद भी सुख की प्राप्ति होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। पुण्य के फल से सुख ही मिलेगा ऐसा नहीं, बहुत पुण्य के उदय से सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन असाता का उदय आ गया तो फिर जो है उसी में पीड़ा भी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे कर्म जो है फल देंगे अपना। पिच्छिका का इतिहास बता दीजिएगा। पिच्छिका तो हमेशा से है, ये तो भगवान ऋषभ देव के टाइम से है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि पिची कमंडलू ये दो ही निर्धारित किए थे। पांच चिन्ह हैं मुनि महाराज जी के, उसमें पिची कमंडलू और नग्न शरीर और बिना किसी संस्कार का, और पांचवा मुंडित केश जिसमें कि केश उत्पाटित किए गए हों, कटिंग ना करवाई गई हो, इस तरह से ये पांच चिन्ह बाह्य चिन्ह हैं। और अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह से मुक्त हैं और बाह्य में 10 प्रकार के परिग्रह से, सब प्रकार के परिग्रह से मुक्त हैं। तो पिची उसमें एक चिन्ह के रूप में आई है, पिची और कमंडल।
हर साल परिवर्तन का क्या,
पुरानी हो जाने से और कोई उसके पीछे वो नहीं है। अगर ये 6 महीने में खराब हो जाए तो हम 6 महीने बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये साल भर तक चल जाती है तो हम इसको। और देखिए मजा ये है कि ये मयूर पक्षी है तो मयूर जो है एक वर्ष में एक बार ही अपने पंखों का विसर्जन करता है। वो विसर्जन भी उसी समय होता है, भाद्रपद के समय पर ही होता है, उसमें विसर्जन होता है। और वो हम साधु अगर जंगल में हो और वहाँ मयूर हो तो हमें किसी से मंगाने की आवश्यकता नहीं, मयूर वहीं पर जितने छोड़ करके जाएगा उन्हीं को बांध करके अपनी पीछी बना ली, बहुत सीधा ये था। अब तो जो है चूंकि यहाँ रहते हैं जहाँ मयूर हैं वहाँ पर राजस्थान में, तो वहाँ से मंगाना पड़ते फिर उनको बनाना पड़ती, और जंगल में तो सहज भाव से मिल जाते हैं वहीं बना दिया। अभी शुरू हुआ, उसके माध्यम से लोगों को कुछ व्रत नियम संयम मिले, इसलिए आचार्य श्री ने वैसा कर दिया, नहीं तो पहले जो है पैसे इत्यादि से भी बिकती थी, ऐसा करके जो है। सर्वप्रथम विचार किसको आया, इससे संबंधित आवश्यक तथ्यों की जानकारी दे, तो यही तथ्य है इसमें। मयूर पिच्छी का भगवान ऋषभ देव के समय से ही ये दिगंबर साधु का चिन्ह बनाया गया। प्रश्न मंच कार्यक्रम की शुरुआत कब, कहाँ, कैसे? अच्छा, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये तो मेरा खाली शून्य आवर्स, जीरो आवर्स में इसको मानता हूँ, शून्य काल है, जिसमें बैठ जाता हूँ और लोगों की कोई होगी हुआ क्या था, गोटे गांव में बैठे थे एक दिन आहार के बाद ऐसे ही, तो 10-15 लोग ऐसे आहार से जो जिनके आहार हुआ वो सब बैठे थे, उतने में जो है 8-10 लड़के लोग आए, बोले कि आप क्या हम स्टूडेंट्स के लिए कोई समय नहीं देते हैं क्या, इनके नॉन जेंट्स सभी थे, तो क्या स्टूडेंट के लिए, तो मैंने कहा ले लो मेरा टाइम, अभी ये मेरा फ्री टाइम है। तो बोले फिर हम लोग कल से इस टाइम में आपसे क्वेश्चन किया करेंगे। हमने कहा हाँ कर लिया करें, मेरा फ्री है टाइम। तो गोटे गांव में अब वो 10-12 लोग आने लगे तो उनके क्वेश्चन सुनने के लिए बाकी लोग भी कहने, हम भी बैठ सकते हैं क्या, ये तो अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो वैसे करके जो है फिर पूरा शुरू ही हो गया, सब लोग बैठने लगे, क्वेश्चन ऐसे लिख करके आने लगे, पहले खड़े होके पूछते थे, क्रॉस क्वेश्चन भी होते थे, हमने उसी को शून्य काल, हमारा इसमें हम कुछ नहीं करते हैं अपना, यही उससे हमारा रिवाइज होता रहता है। किसी ने कोई नया क्वेश्चन किया हमको, मान लो प्रश्न तो आपने कर दिया, हमने तुरंत जवाब भी दे दिया, पर कई बार ऐसा लगता है कि इसका और भी बढ़िया जवाब हो सकता है, तो फिर जाके स्टडी करता हूँ कि इस प्रश्न का और क्या जवाब हो सकता है, तो उस माध्यम से मेरा भी स्वाध्याय होता है। प्रश्न नाम का स्वाध्याय है ये एक्चुअली, अगर अपन देखें अपन तो जो लोग वाचना करेंगे, जो अपने जीवन को बाँचेंगे, कह लीजिएगा दिन भर में अपने जीवन को बाँचे, अगर अपन देखें कि क्या क्या ऐसा क्यों मेरे जीवन में है, क्या उपाय है कि मैं क्रोध से बच सकूँ, क्या उपाय है कषाय से बचूँ, क्या उपाय है कि मैं श्रद्धा करूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, अपने जीवन से ही आते हैं, तो वो क्वेश्चन व्यक्ति पूछ लेता है, ये प्रश्न कहलाती है, जीवन के बारे में प्रश्न पूछना, यही तो प्रश्न है, या कि हमने जो शास्त्र का स्वाध्याय किया उसमें से जो बात समझ में नहीं आई उसको पूछना, यही प्रश्न स्वाध्याय का एक भेद है। तो ये स्वाध्याय
बहुत है इसका, सभी जगह ऐसा उत्साह है,
सभी जगह
बहुत बड़ा उत्साह है, ऐसे लगता है आदमी को अभी एक घंटा आप और बैठे तो
सभी जगह
कोई नहीं
सब जगह, हाँ कहीं कम कहीं ज्यादा ये बात अलग है, पर सब जगह उत्साह धीरे धीरे बनता है लोगों का मन। आपके वहाँ मुझे आशा नहीं थी बीना में, मैं तो शुरू शुरू में कि क्या पता लोगों को कैसा, लेकिन शुरू हुआ तो मैं 25 दिन रुक गया वहाँ पर, जबकि मेरा 8 दिन के लिए जो है ठंड के समय पर था, 25 दिन रहे और लोगों ने काफी जानकारी, पर ये शाम को होता था जो आपके यहाँ पर आहार के बाद रख रहे हैं वो वहाँ पर शाम के, गुना में भी शाम के टाइम में ही होता था। सबसे अच्छा प्रश्न आपको कौन सा लगा इस प्रश्न मंच के दौरान? मुझे तो प्रश्न अच्छे बुरे का सवाल नहीं, हाँ इतना जरूर है कि जब बहुत व्यक्ति बहुत सरलता से कोई चीज पूछ लेता है और बहुत सहज प्रश्न जीवन से संबंधित प्रश्न होता है तो मुझे अच्छा लगता है। और वही किताबी प्रश्न कि इसके कितने गुण स्थान में कौन सा होता हो, कौन से किसके लिए क्या, दुनिया भर की बात है, तो हम कहते हैं उनसे कि किताबें बहुत रखी मेरे पास, संजा खाइयों से ले जाइए, बहुत पढ़ लेना आप उसमें। तो ये क्वेश्चन तो बस, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक छोटे छोटे से बच्चे वहाँ पर सतना में मैंने देखा, एक बच्चा था वो तो अपना मेरा वेट करता था, आप आ रहे होंगे और आएंगे और उसको एक क्वेश्चन पूछना और पूरी भरी भीड़ में से उसका क्वेश्चन आ गया, मान लो उसका आंसर हो गया, वो उठा और उसने बाहर निकल गया, उसका क्वेश्चन हो गया। और वो क्या पूछता था, 16 के कपड़े ऐसे लकड़ी से उठा करके ले जाने में क्या 16 के रह जाते हैं? तो बस, जबकि वो 5 साल का था, कंफर्मेशन करता था वो सबके सामने और अपना क्वेश्चन उठा के चला। तो ये मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सीखने के लिए पूछता है, 4 लोगों के बीच में बहुत अच्छा माना जाऊंगा, मैंने कोई बहुत बढ़िया प्रश्न किया, ये दृष्टिकोण नहीं है। जिसका दृष्टिकोण ये है कि मैं इस बात को सीखूं, उसमें लिखा है कि वाचना के बाद प्रचना नाम के स्वाध्याय को क्यों करते हैं, तो कहते कि अज्ञान की हानि के लिए, हमें जानकारी नहीं है इसलिए हम पूछ रहे हैं, और दूसरा हमें जानकारी तो है लेकिन उस जानकारी को पुख्ता करने के लिए, उसे दृढ़ीकरणार्थम कहते, उसे दृढ़ करने के लिए है अनुप्रेक्षा नहीं, प्रचना में, प्रचना की में जो है दृढ़ करने के लिए पूछना। हाँ, प्रचना के बाद फिर अनुप्रेक्षा आएगी, मुहर मुहर चिंतन, हम उसको बार बार चिंतन करेंगे। तो सबसे अच्छे प्रश्न वही लगते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस तरह के। आचार्य श्री का आप स्मरण करते हैं, कृपया बताइएगा कि जब प्रश्न मंच के पहले तो किस प्रकार स्मरण करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? नहीं, मैं अपने भीतर तैयारी करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ कि शुरू करता हूँ मैं, मुझे तो कोई आंसर आता नहीं है, देना आपको है, आप जैसा देंगे मैं वैसा बोलते चले जाऊंगा, एक रिस्पेक्ट, एक डिवोशन उनके प्रति समर्पण होकर के फिर शुरू करता हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अहंकार आ जाए, मैं उस चीज़ से बहुत बचने की कोशिश बहुत करता हूँ। जब आप दीक्षा लेने का निर्णय कर चुके थे और स्टडी भी कर रहे थे उस दौर में, कुछ घटनाएं की चर्चा कर दीजिएगा। मुझे सबसे बड़ी घटना तो मुझे जो याद है वो ये आपसे कहूँ कि मैं 10 तारीख को दीक्षा हुई है, मैं 6 को आना चाह रहा था, 6 को संडे था, 10 को तो गुरुवार था, और हुआ क्या था कि संडे को ही हम लोगों का जो लास्ट सेमेस्टर था तो उसका डेजर्टेशन सबमिट करना पड़ता, तो वो डेजर्टेशन सबमिट होना था संडे को सुबह मॉर्निंग, तो संडे को मॉर्निंग में गए जमा करने के लिए, तो वहाँ मालूम पड़ा कि सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी का 11 बजे बाइंडिंग होकर के मिलेगा, किसी का टाइपिंग में पड़ा है, तो सब ऐसा नहीं होता था कि एक कर देवे और बाकी ना करें, तो पूरा ग्रुप, तो पूरे ग्रुप ने कहा कि यार तुम्हारा तो तैयार हो गया जल्दी से और हमारा तो शाम तक हो पाएगा, तू सबमिट करेगा क्या आज? मैंने कहा नहीं, जब सबका हो जाएगा तो सबमिट करेंगे, इसमें क्या, मैं कोई इतना थोड़ी कि मैं पहले कर दूं बाकी को 0 मिल जाए, ऐसा थोड़ी करूंगा, नहीं अपन सब शाम को ही करेंगे, वो क्या कर लेंगे, हमारा सुबह का टाइम दिया था, जब किसी ने नहीं किया, एक आध कोई कर देगा तो सबकी एब्सेंट लगा देंगे, और किसी ने नहीं किया तो उनको शाम को लेनी पड़ेगा, तो ऐसे करके और मेरा प्रोग्राम जो है वो चेंज हो गया, कि मैं सबमिट करके फिर बाद में जाने के मूड में था, लेकिन उस दिन सबमिट नहीं हुआ तो मैं रुका फिर, अब नहीं जाऊंगा अभी। फिर 7 तारीख को सबमिट हुआ, फिर सबमिट होने के बाद नोड्यूज बनते हैं, तो फिर वो 9 तारीख के शाम तक नोड्यूज बने सब जगह से, जो भी 5 पैसे भी अगर आपके ड्यू होंगे तो वो 5 पैसे भरना पड़ते बैंक में, वो साइन करना पड़ते हैं, नहीं तो फिर कल के दिन मैं चले जाऊँ तो कौन साइन करेगा और कौन झगड़े में पड़ेगा नोड्यूज बनवाने के, वो ब्लेम कर दें, तो वो सारा कुछ कंप्लीट 9 के शाम को कंप्लीट हुआ और मैं 10 को आचार्य श्री के चरणों में पहुँच गया था। कुल मिलाकर के उसकी विशेष घटना, और मेरे मन में उस समय बहुत सारे विचार थे, जो मैं आपको बताऊं कि मेरे मन में ये आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ये सोचेंगे कि शायद इनसे पढ़ते लिखते नहीं बनता होगा इसलिए चले गए, तो मैंने जो पहले विचार किया था 77 में कि शायद इस समय अच्छा मौका है मैं चले जाऊँ, मैंने सोचा कि नहीं लोग कहेंगे ज़रूर कि इनसे सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा एमटेक में इसलिए चले गए, मैंने कहीं होने के बाद देखूंगा, तो हो गया, तो फिर सोचा कि अब चले जाएं, अब तो हो ही गया, ठाट के साथ कह सकते हैं कि हो गया था हमारा, उसमें जा ही रहे थे, नहीं मैं सोचा कि लोग कह सकते हैं कि इनसे पढ़ते नहीं बना होगा, कठिन पढ़ाई है, तो फिर सोचा होगा सिलेक्शन के बाद भाग लो अब अपने से बनने वाला नहीं है, तो फिर मैं नहीं पढ़ूंगा पूरा, पढ़ने के बाद लास्ट मोमेंट तक जो है, मैंने आप ये समझिएगा कि मैं ये नहीं कहलवाना चाहता था कि अक्सर लोग कहते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो क्रीम है वो तो इंजीनियर डॉक्टर और सब बन जाती है, जो वेस्ट बचता है वो साधु बन जाता है, जिनको खाने पीने का सेजा नहीं रहता है या जिनको कोई बुद्धि नहीं रहती ऐसे लोग साधु बन जाते हैं, अक्सर लोगों के दिमाग में ये चीज़ थी आज से 15-18 साल पहले, जो उसकी बात कह रहा हूँ मैं उस समय, हाँ पलायन कहते थे कि कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीजें थी कि नहीं ये सब चीजों में कोई प्रश्न चिन्ह न लग पावे, मैं ऐसा कुछ करके और फिर उसके बाद जाऊंगा। पंडित जी को मालूम, पंडित जी थे। हाथ की पांचों उंगलियां किन किन बातों की प्रतीक हैं? चाहे जैसा बना लीजिए, पामिस्ट्री से कहिएगा तो पामिस्ट्री से डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, अध्यात्म के लिए, यश ख्याति के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, हम विल पावर के लिए। पांच उंगलियों को आप कर लीजिए एक्सप्लेन, चाहे जिस तरह एक्सप्लेन कर लीजिए पांच उंगली, ये पामिस्ट्री के हिसाब से
पांच कर जाने लोग अंगूठे लगा के
तर्जनी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। लोगों में भावना शून्य, वैसे तो हाँ, जब हमारे ये हाथ उंगलियां पवित्र होती हैं, जब हम किसी का उससे उपकार करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, तो ये पांचों ही जो है, एक कोई एक की इंपॉर्टेंस नहीं, पांचों मिलकर के ही। अलग अलग झगड़ा हुआ था इनमें कि कौन ज्यादा बड़ी है कौन छोटी है ना, एक बार तो वो फिर एक दूसरे से काम अटक गया था सबका। लोगों ने में भावना शून्यता बढ़ती जा रही है, कोई उपाय बताइए जिससे भावना शून्यता, भावना अनंतता में परिणत हो सके। कोशिश तो मेरी भी यही है भैया कि व्यक्ति के अंदर जो भावनात्मक पहलू है वो बुद्धि के द्वारा मर ना जाए, उसको बुद्धि खा ना जाए, वो बुद्धि उसको मार देती। उसमें जो अपन कहते हैं ना कि मोथा हो गया हमारा, जो जैसे कोई भी चीज बनाने का हो उपकरण और वो मोथरा हो जाए तो क्या होता फिर उससे वो चीज। इसी तरह हमारी बुद्धि के द्वारा हमारी भावनाएं मोथरी पड़ती चली जाती, मरती तो नहीं है एकदम, लेकिन उनका जो जिनकी जो शॉर्टनेस होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। हम अपनी पीड़ा में तो रो लेते हैं, लेकिन दूसरे को कोई पीड़ा देखें थोड़ी सी तो वहां सुई नहीं आती, इतना सूख गया हमारे भीतर जो है करुणा का स्रोत। अनुकंपा लिखा है, सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है अनुकंपा, अपने पीड़ा में नहीं दूसरे की पीड़ा देख करके भीतर भीतर कप जाता है कि क्या करूं, ये संसार पूरा का पूरा दुखमय है, इसकी पीड़ा कैसे दूर करूं। तो वो चीज डेवलप होने के लिए तो श्रद्धा को डेवलप करिएगा धीरे धीरे जो है, किसको मैं क्या कहूँ, भावनाओं के लिए बढ़ाने के लिए क्या करें, ऐसे संगति ही करें, भगवान के साथ में रहें, देवगुरु शास्त्र के साथ में रहें, उनसे हमें भावनात्मक किया कि जो भावनात्मक लोग हैं उनके साथ रहें। और दूसरी चीज ये कि भावनात्मक व्यक्ति को, भावुक व्यक्ति को बुरा नहीं, ये भी एक हमारे भीतर बात बन गई है कि जो रोता है वो नादान है या कि कमजोर है, तो जब हमको रोना भी आएगा तब भी हम बड़े उससे जो है बड़े मजबूत बनने के लिए ऐसे बैठ जाएंगे, नहीं रोएंगे हम ऐसे करके, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर वो चीज सूखना शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और बहने वाली स्थिति हो कि व्यक्ति को जहां जैसा लगा वैसा बह गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो भावनात्मक रहेगा। क्यों बच्चे में क्यों नहीं रहता, वहीं से तो हम भी पैदा होते हैं। हर छोटे बचपन में हर एक के भीतर कितनी संवेदनशीलता होती, वो कैसे खत्म होती जाती, उस पर बुद्धि का दबाव पड़ता, वो वातावरण का दबाव पड़ता, वो देखता है कह रही रोने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हटाओ फिर अपन भी रोएंगे नहीं और अब वर्चस्व बना के रखेंगे, उन्हें अपनी भावनाओं पर कुठाराघात कर ले, अपनी भावनाओं को हम दबा लेते हैं कई बार, तो वो भी हमें उससे बचना चाहिए और दूसरे को बचाना चाहिए, ऐसे कुछ कर सकते हैं। क्या आपको घुटने के बल बैठकर पढ़ गए? नहीं भैया, खड़े होकर के पढ़गाया जाता है, घुटने के बल बैठ करके। आज बड़ी मुश्किल से टेप रिकॉर्डर की व्यवस्था हुई है, कृपया जो है सिद्ध नाम वाली कविता जरूर सुना दीजिएगा। कल कई लोगों ने पहले से तय करके रखा है, पर 12:15 पूरे हो गए हैं क्वेश्चन मेरे। ये मुझे कभी किसी ने सुनाया था, तन का क्या श्रृंगार सजाना मन श्रृंगारो तो मैं जानू, तन का क्या श्रृंगार सजाना मन श्रृंगारो तो मैं जानू, बहुत सरल है कभी किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना, नहीं कठिन है हर दुर्बल को धमकी देना और डराना, बहुत सरल है कभी किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना, नहीं कठिन है हर दुर्बल को धमकी देना और गिराना, अरे बेबस को क्या और सताना, उसे उठाओ तो मैं जानू, तन का क्या श्रृंगार सजाना मन श्रृंगारो तो मैं जानू। इतना मुझे याद है, इनने पूछा कि इसको पूरा सुना दीजिए। जब कोई हमसे हमारा परिचय बता पूछता है तो हम बताने में असमर्थ हो जाते हैं, यदि पिता के नाम से परिचय दें तो वो रिश्ता तो हमारे द्वारा बनाया गया, यदि अपने नाम से परिचय दें तो वो दिया हुआ नाम है, तो फिर हमारा परिचय कैसे दें जिससे कि हमें संतुष्टि हो। आप अपने से परिचित हो जाएं, यही इतना ही पर्याप्त है, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने से ही परिचित नहीं है तो आप कैसे, अब सारा तो लेना पड़ेगा कि हम फलाने के ये हैं। आपका अपना परिचय तो आप जब स्वयं से परिचित होंगे तो हर को मालूम पड़ जाएगा आपका परिचय। बैठे तो हैं भगवान, जिनको अपने से परिचय हो गया है उनका परिचय दुनिया भर को हो गया, लेकिन हम अपना परिचय देंगे और हमें खुद परिचय नहीं है तो वो सब अधूरा ही होगा वो, और आपकी कोशिश अधूरी है इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। रात्रि भोजन नेल पेंट्स का त्याग किया, लेकिन स्वप्न में हमने नेल पेंट्स का इस्तेमाल भी किया है और फिर रात में भोजन भी किया, कोई बात नहीं, वो संस्कार है, आएगा धीरे धीरे जो है खत्म होगा। इसलिए तो कहते हैं कि इन सब क्रियाओं को जो है इतना इम्पैक्ट होता है तो फिर हम इसके बदले धर्म की क्रियाएं क्यों ना करें। कभी किसी ने अपने को अभिषेक करते रात में स्वप्न में देखा, सौभाग्य हो जाए उसका। कभी किसी ने अपने को पूजा करते, हाँ कई लोग आहार देते जरूर देख लेते हैं, वो भी सौभाग्य कि हम मुनि महाराज को पड़गाया है आहार दे रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये क्यों, उसका संस्कार अगर जितना प्रगाढ़ होगा तो वही चीज स्वप्न में आती, तो अच्छे संस्कार डालिए ताकि वो चीज धीरे धीरे निकल जाए। ये कई दिन से मेरे पास प्रश्न आ रहा है, नंदीश्वर द्वीप जाने वाले सभी देवों को सम्यक दर्शन होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं। नंदीश्वर जाने वाले सभी द्वीप सम्यक, जमी द्वीप सम्यक दृष्टि हो, देव सम्यक दृष्टि हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मिथ्या दृष्टि अपने कुल देवता मान करके भी जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा भी जो है शास्त्रों में तिल्लोय पंडित्य वगैरह में आता है। नंदीश्वर द्वीप में बावड़ी में परवर्तक ऊपर है या नीचे, क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। क्या भगवान तीर्थंकर को आहार में जो पंचाश्चर्य होते हैं वो प्रथम आहार या कि सभी आहार में? सभी आहार में होते हैं पंचाश्चर्य, जहां भी भगवान का आहार होता है वहां पंचाश्चर्य होते, देवों के द्वारा किए जाते हैं। देवनार जो, अच्छा देवनारकियों के, इकट्ठा लिख दिया आपने, देवनारकियों को जो अवधि ज्ञान होता है वो कैसा है? तो अगर सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दर्शन के साथ देव में गया होगा तो उसका अवधि ज्ञान सम्यक, सु अवधि ज्ञान होगा उसको सु नहीं बोलते, अवधि ज्ञान ही बोलते हैं। और फिर विभंग अवधि ज्ञान अगर मिथ्यात्व के साथ में होगा तो विभंग अवधि या कु अवधि ज्ञान होगा। इस तरह से जो है दोनों के लिए अवधि ज्ञान तो होता है नियम से, क्योंकि भाव प्रत्यय है वहां पर, देव और नारकियों के अवधि ज्ञान होगा। अब अच्छा वाला होगा तो सम्यक दर्शन के साथ होगा, बुरा होगा तो मिथ्यात्व के साथ। आपके शुभाशीष का रंग जो है नारंगी क्यों है? कोई विशेष कारण है? बस ऐसा ही मेरे मन को अच्छा लगा, मैंने वैसा लिख दिया। अब वो पेन नहीं है तो नहीं है, तो कोई बात नहीं। आज लोग जो कह रहे थे कि आप लिख ही नहीं रहे, मैंने कहा सुभाषिश नहीं लिख रहा हूँ, पेंसिल ही नहीं मेरे पास। कभी कभी अत्यधिक, इसका कोई कंपनसेशन नहीं है कि मैंने वही रंग क्यों चुना, ये मेरी अपनी चॉइस है। कभी कभी अधिक, वैसे भी अगर देखें तो अच्छी लेशा है, शुभ लेशा मानी गई है, पीत पद्म और शुक्ल, ये शुभ लेशा का प्रतीक है। अपन लोग पीले वस्त्र पहन के, नारंगी वस्त्र केशरिया पहन करके अभिषेक करते हैं, सफेद पहन करके कभी कभी। और फिर सफेद पर काले से क्या लिखना, मैंने एक बार लिखा था कि सफेद पर तो ऐसे ही लिखो जिससे कि उजला उजला दिखे, काला क्या लिखना उस पर। कभी कभी अत्यधिक क्रोध आने पर दिमाग को स्थिर करने के लिए माथे पर उंगली रखकर आंखें बंद कर क्रोध शांत करने का ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज, तरल पदार्थ नीचे जा रहा, जैसे कि थर्मामीटर में पारा नीचे जा रहा है, ये क्या चीज है? इसके बारे में आपसे अलग से चर्चा करूंगा। वो आप हाँ उंगली से जो है अपने आज्ञा चक्र पर आप उंगली रख लेते होंगे, अगर वो एग्जैक्टली आपका आज्ञा चक्र होता होगा तो आपको इसी तरह का फीलिंग होगा कि समथिंग इज कहना चाहिए, क्या कहें उसको, सबसाइड, कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल एकदम दबते चला जा रहा है, वो आपने आज्ञा चक्र पे हाथ रख दिया इसलिए जो है दबते चला जा रहा। ये प्रयोग किए थे कई लोगों ने, जो तथाकथित भगवान हैं उनने क्या किया था, व्यक्ति को इसी तरह से किया था कि व्यक्ति के आज्ञा चक्र को पता करके उसको दबा दिया आज्ञा चक्र को, वो बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा। नरेंद्र थे, विवेकानंद कैसे बने, उनके रामकृष्ण ने जो है उनके कहते वो जागृत कर दिया। जागृत क्या, शक्तिपात अक्तिपात क्या है, आज्ञा चक्र अगर मालूम पड़ जाए और आज्ञा चक्र पर कोई प्रेशर दे दे तो फिर उसके लिए जागृति होने में देर नहीं लगती है वो सबके पास। अपन लोग क्या करते हैं, अपन ध्यान की प्रक्रिया में ये अपना ध्यान का केंद्र है, यहाँ अपन ध्यान करते हैं तो वो संवेदनशील है बहुत, वहां जाके संवेदना होना शुरू होती तो एकदम कंसंट्रेशन बन जाए, इसका तो काम ही है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे। क्या माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जा सकता है? दर्जा तो दिया जा सकता है लेकिन अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरपांति नहीं किया जा सकता, नहीं तो करके देना आप जो है माता पिता को, तो फिर ऐसे अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरपांति, तो उनको खुदा ही नहीं अनर्घ पद की प्राप्ति, और सब करो दर्जा दे लो कोई बात नहीं, लेकिन एकदम ही तो फिर उनको वेदी बनवाना पड़ेगी आपको, बेचारे परेशान हो जाएंगे कि वेदी बिठा लो उनके लिए पूजने के लिए, ऐसा नहीं। भगवान का दर्जा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव क्यों लिखा हुआ है? माँ हमें देव के समान है क्योंकि वो हमें संभालती है, हमें आगे बढ़ाती है। पिता भी देव के समान है क्योंकि वे हमें अच्छे संस्कार देते हैं। आचार्य देवो भव क्योंकि वे हमें दूसरा जन्म देते हैं, वे हमें मोक्ष के मार्ग को बताते हैं, इसलिए हमने उनमें देवत्व मान लिया है। इस दृष्टि से अगर उनको देवत्व कहें, भगवान कहें, तो कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप की हृदय से सेवा करने पर भी वे बद्दुआ देते हैं तो क्या करें? क्या माँ से पिता को बड़ा दर्जा दिया जा सकता है? नहीं, माँ से तो किसी को बड़ा दर्जा नहीं दिया गया। माँ से तो गुरु को ही बड़ा दर्जा दिया गया, उसके अलावा किसी को नहीं। गुरु को माँ माना गया है कि जैसे माँ उधर है सबसे श्रेष्ठ, ऐसे यहाँ पर गुरु है, दोनों बराबर माने गए हैं, माँ और गुरु। किसी और बाकी को नहीं है ये दर्जा, ना पिता को है ना और किसी को। रही बात बद्दुआ की, तो हमने तो एक केस ऐसा देखा ग्वालियर में, आश्चर्यजनक हुआ मतलब। और पिता बिटिया से नाराज है और बिटिया और माँ दोनों के लिए घर से बाहर निकाल दिया, और दोनों ने बाजू में मकान ले लिया है किराए से, लेकिन उनके घर की लाइट इन्हें कटवा दी, उनके पानी ना पहुंच पाए, इसलिए जो है अपने यहाँ पर मशीन लगा के अब सारा पानी अपने आप। इतनी कशाय पिता की अपने बिटिया से और माँ से नहीं। हाँ, तो राशय हो सकता है, कोई जीव होगा पुराना। अरे बहुत समय की, अपन को आज कोई पूर्व भाव बता देवे तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जिससे आज अपना बहुत, इसने जिसको अपन मित्र समझते हो वो शत्रु निकले, और कौन जो जिसको हम शत्रु समझते हो पिछले जीवन का मित्र निकले, तो ये शत्रु मित्रता। तो
वैसे तो साहित्य में जो है कुपुत्र तो आया है, कुपिता शब्द नहीं आया अभी तक साहित्य। अब नई बात लिखना पड़ेगा।
अच्छा, आप पुत्र ज्यादा हैं कि पिता ज्यादा है? कोई भी पिता तो बहुत बाद में होता है, कोई भी पुत्र ही होता है पिता। पिता तो पुत्र के वजह से पिता कहते हैं, बाकी तो वो पुत्र ही था किसी ना किसी का। अब उसका चूंकि पुत्र हो गया, जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन उसको पिता कहना शुरू हुआ, उसके पहले उसको पिता नहीं कहते थे। बेटा और पिता दोनों एक 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 ही दिन पैदा हुए, अगर गौर से देखा जावे तो, उसके पहले नहीं था।
क्योंकि
पिता की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। और क्या कहेंगे, ये अग्निपथ की बहुत सारी कविताएं, इसमें आरिका बनना चाहें तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इसमें कोई विशेष क्वेश्चन। दूध शाकाहारी है या मांसाहारी? और कोई भोपाल से बहन जी आई हुई है, उनका प्रश्न है। दूध शाकाहारी है क्योंकि दूध जो है वो, उसमें किसी तरह का कोई क्रोमोसोम, बायोलॉजिकल अगर उसमें देखें अपन तो कोई क्रोमोसोम नहीं होता, और दूध जो है वो एक मैमल्स में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होने वाला सिक्रीशन है, वो शरीर का कोई अवयव नहीं है जैसे रक्त और मांस है वैसा, और ना ही उसमें कोई प्रकार की शेल्स होती हैं दूध में, जैसे कि ब्लड में शेल्स होती हैं, और एक शेल एक जीवन को के प्रतीक मानी गई है। और कभी आप गौर से देखें तो किसी भी उसमें से, जैसे अंडे में से चूजा निकल आता है, स्पर्म्स डाल दिए जाए इंक्यूबेटर में रख दिया जाए, ऐसे एक गिलास दूध भर करके उसमें स्पर्म्स डाल दिए जाए इंक्यूबेटर में रख दिया जाए, तो कोई गाय वाय नहीं निकलने वाली है। दूध में से कोई गाय पैदा होती है? नहीं पैदा होती। और दूसरी बात यह है कि अगर दूध और ब्लड में कोई फर्क नहीं है तो ठीक है, कल से फिर डॉक्टर्स को कहिएगा कि ये ब्लड डोनेशन बंद करो, मिल्क डोनेशन शुरू करो, सलाइन लगाओ तो बॉटलिंग करो तो मिल्क की बॉटलिंग, मर जाएगा वो एक ही बूंद अगर भीतर उसमें ब्लड में चली जाएगी। दूध और दोनों में बहुत फर्क है, बायोलॉजिकली भी है, और अगर अपन ऐसे भी देखें, गोरस गोरक्त और गोमांस तीनों अलग अलग चीजें हैं। गोरस मतलब दूध, और गो रक्त और गो मांस बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर गौर से इनकी कैशिन प्रोटीन देखी जाए तो दूध की प्रोटीन को कैशिन बोलते हैं, एल्बुमिन बोलते हैं अंडे की प्रोटीन को, और हीमोग्लोबिन बोलते हैं ब्लड की कैशिन प्रोटीन को, सबके अलग अलग नाम है। और गाय को दूध निकाल लेने से शांति मिलती है, उसको कोई पीड़ा नहीं पहुंचती है, उसका ब्लड निकाल लो उसका मीट ले लो तो मर जाएगी वो, उसका अनिवार्य अवयव है ये, तो उसके लिए बेटे के लिए उसने, बेटा इससे दूध से पैदा नहीं होता, वो तो अपनी रक्षा करता है उसको पी करके। और अगर मानिएगा कि दूध मांसाहारी है तो हम सब मांसाहारी हैं क्योंकि हमने सबसे पहले अपने जीवन की शुरुआत माँ के दूध से शुरू की है, फिर तो हम भी मांसाहारी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, शाकाहार में शामिल किया गया हूँ क्योंकि विदाउट क्रुएल्टी, उसमें लिखा है विदाउट क्रुएल्टी एंड किलिंग ए मील प्रोड्यूस बाई, माने जहाँ से वो प्राप्त हुई है अगर वो उसमें कोई क्रुएल्टी और किलिंग नहीं है तो वो सब शाकाहारी मानी गई है। ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछ लिया, बहुत मैं पहले जवाब तो दे चुका हूँ। पंचम काल के अंत में जो जीव रहेंगे किसी स्थान पर, वो कौन सा स्थान? विजयार्थ की श्रेणियों में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे। कब तक रहते हैं जीवन यापन ऐसे ही करते हैं, आगम में आया है, आगम में आया है यही आया है कि वो 7 दिन तक जो खराब दृष्टियां होती हैं उन दिनों में उसको सेव कर लेते, 7-7 दिन की 7 दृष्टियां होती हैं जिसमें सारा कुछ नष्ट हो जाता है, फिर उसके बाद 49 दिन फिर 7-7 दिन की अच्छी दृष्टियां होती हैं, फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता, तब वो बाहर निकलते हैं 49 दिन के बाद। हमने एक बार आपसे शायद कहा हो कि जब चतुर्मास स्थापित करते हैं, जब चतुर्मास स्थापना जिस दिन करते हैं उसके 49 दिन पूरे होने के बाद 50वां दिन कौन सा है, पर्युषण का पहला दिन। तो वो प्रतीकात्मक है कि 49 दिन तक जो है वो अच्छी वृष्टियां हो रही हैं और अब हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत होती है, अब हम जो है पर्युषण पर्व से अपने आत्मा के लिए धर्म की शुरुआत करते हैं। तो 49 दिन के बाद 50वें दिन
जोड़े लेकर रखे जाते, उन्हीं से जनरेशन होता
है, उन्हीं से जनरेशन, तीर्थंकर उन्हीं से पैदा होंगे, क्रॉस ब्रीड नहीं चलेगा,
तो वो षष्ठ काल के एंड टाइम में,
हां एंड, जो बचे रहेंगे एक एक फिट के छोटे छोटे बने रहेंगे, बचे रहेंगे
उन्हीं में से
फिर जाके छठे काल में सब जनरेशन होंगी, वो फिर उनकी हाइट वगैरह बढ़ती जाएगी, जब तक तीर्थंकर चौथा काल आएगा तब तक
सब, समय की एज तो कम है
तो क्या फर्क पड़ता, 16 साल की 20 साल की मैक्सिमम रहेगी, फिर उनसे दूसरे हो जाएंगे, तीसरे हो जाएंगे, इस तरह कंटिन्यू चला रहे चलता रहेगा, वही थोड़ी रह जाएंगे, वो कंटिन्यू अनंत नाम वाली कविता रह गई, हमने सुनाई भी थी पिछले संडे को, सुन लीजिएगा, 2 मिनट लगे, मन बनाना पड़ता, आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ा नीड है, सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, आपके ही वंश से भटका हुआ देवता, आपके ही वंश से भटका हुआ देवता, आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, ये अनादि काल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे,
मैत्री भाव।
रहे सरल सत्य व्यवहार करूं
रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं
बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं
बने जहां तक इस जीवन में
करूं